व्यक्ति भक्ति करने वाला भजन करने वाला है उनका मुझको दर्शन करो। अच्छा मुका लगने पर कराएं। इतने में चलते चलते एक बड़ा भारी तालाब आ गया और उस तालाब के ऊपर एक बगला है सो किनारे पर एक पैर उठाए हुए और अपने ध्यान के मां मस्त था कि लक्ष्मण देखो ये वक्त कैसा भक्त है। महाराज ये तो एक प्रकार से मच्छी की टांग में आपने सो ध्यान लगाया बैठे है। तू नहीं जानता ये मेरा बड़ा अच्छा भक्त है, बहुत ऊंचे दर्जे का भक्त है कि महाराज इसमें भक्ति की बात कौन सी देखी। तो नजदीक गए तो अब वो एक प्रकार से अपने पानी की तरफ जल की तरफ चूंस तो करता है फिर ऊपर उठा लेता है, चूंस करता है फिर ऊपर उठा लेता है। तो लक्ष्मण पूछे महाराज इसके कोई गले में दोष है क्या, ये मालूम देता है प्यासा तो ये है किंतु जल पी नहीं सकता तो कुछ इसके कोई बीमारी है क्या। बोलो बीमारी नहीं है ये मेरा भक्त है, ये निरंतर मेरे नाम को जप करे। तुम पानी पियो इतनी बार नाम को जप छूट जावे तो ये वर्षा को भूखो है माने वर्षा को प्यास हो। यो बिचारो पी नहीं सके पानी। महाराज यह बात तो समझ में नहीं आई। बोले इसके नियम है कि निरंतर भजन करनो, कोई इन कानों में सुना तो रहे मेरो नाम राम 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 तो भी वो बेचारो पानी पी ली तू इन्हें सुना कर देख। तो नजदीक में जाकर के राम 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 लक्ष्मण जी करने लगा और वो बक्के जी को पानी पीने लगे और वो राम राम करनो बंद कर दियो वही वक्त से एक प्रकार से वो पानी पीना बंद कर दियो। बोले लक्ष्मण प्यासा तो बहुत वर्षों का है इन्हें अपने पानी सो की प्यास बहुत है। तो बोले महाराज क्या किया जाए। बोले तू जितनी बार इन्हें पानी पिलाए ने राम राम कहना जा वो पानी पीतो रही। तो वो फिर ऐसा राम 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 करे वो पानी पीते अगले वो चुप हो जाए फिर वो भी ऐसे पानी पीना बंद कर दे फिर वो राम राम शुरू करे फिर पानी पीना शुरू करे। बोले लक्ष्मण बहुत प्यासा है इसको पानी एक उसे प्याओ। और लक्ष्मण जी तो पानी प्यासा रहता ही यार क्या मतलब जो है ये दो चार मिनट पांच मिनट वो राम 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 करता रहे वो पानी पीते रहे वो छोड़ दे वो पीने वो राम राम करना छोड़ दे बिना पानी पीना छोड़ दे। बोले लक्ष्मण ये तुम्हारे समझ में आया कि नहीं तू इस प्रकार से तू मेरा निरंतर भजन करे क्या। बोले महाराज इस तरह से तो नहीं बने। तो अब ये देख ये बक है जी का भी तेरे से तो बढ़कर भक्त है ये बगलो है जी को अब तुम प्रत्यक्ष देख ले। तू राम राम करता है तो पानी पी लेता है तू बंद कर देता है बंद कर देता। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है महाराज मैं जो अभिमान करे हो मैं को आप एक प्रकार से मैंने प्रत्यक्ष परिचय दिखला दियो अभिमान को तो यही आपने दंड होना चाहिए। मेरे मन में ये अभिमान आ गयो कि मैं जिस प्रकार से भगवान को भक्त हूँ भगवान को भजन करूँ इस प्रकार से और कोई कर सके क्या। और किंतु कर सके यह बात अब मेरे समझ में आ गई। तो भगवान है उसके अभिमान को चूर कर देते अपने भक्तों के अभिमान को रखते नहीं है। एक दफे की बात है, नारद जी आपका वीण बजाता हुआ आया, वो पहली बात जो कही वो ही लोकोक्ति है, अब जो कह रही हूं यह भी लोकोक्ति है। मगन हो रहा है एक प्रकार से। तो नारद से पूछा कि नारद तू प्रेम के वहां मगन होता आ रहे है, क्या बात है? बोले महाराज, फलाने वृक्ष के नीचे एक आपको भक्त जी को आप तपस्या करे, आपको भजन ध्यान करे है, वो यह बात पूछाई है कि मैंने आपके दर्शन कब होंगे। बोले नारद, उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षा तक तपस्या और भक्ति करने से दर्शन होंगे। तो नारद जी ने सिर धुन कहा, महाराज वो तो अच्छा वक्त है, इतने दिनों के बाद हम लोग नारद उसकी भक्ति तो ऐसी है। तो फिर घूमते फिरते नारद वहां आए, नारद से पूछा कि महाराज मैं आपसे प्रार्थना करी थी, मेरे विषय में पूछना पूछा था भगवान, पूछा था भगवान ने क्या जवाब दिया? तो भगवान ने ये जवाब दिया कि इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं ना, इतने वर्ष बीतने के बाद तेरे को मेरा दर्शन होगा। ओहो, मेरे को भगवान का दर्शन होगा, यह बात भगवान ने कही? अरे बोलो कब होगा? बोलो कभी हो, होगा तो सही ना? हाँ, भगवान का जो वचन है वो तो होगा ही, कभी हो। मेरे जैसे अपने पुरुष को भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ये सुनकर के मैं कहीं इतना हर्ष हो कि मैं आनंद को ठिकाना नहीं रहो, एकदम मुग्ध होकर के नाचने लगे हो, और मैं प्रेम की बाहुलता और मुग्धता देकर के नारद भी बंग साथ में नाचने लगे। इतने में भगवान आ गए। नारद जी बोले भगवान से कि आपने तो यह बात कही कि इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद में उसको दर्शन दूंगा। बोले बाप, भक्ति तो वैसी थी किंतु अब तो मेरे को स्वरूप ही बदल गए, अब मैं इतना समय कैसे रुक सकूं, क्षण मात्र भी नहीं रुक सकूं। जय भक्त में वो भक्ति करो हो, मैं के स्वरूप को ख्याल करके मैं तने कही थी, अब तू देख तू ही नाचन ला क्योंकि देख अगर प्रेम को तो तू ख्याल कर, अब कैसे रुक सकूं। तो यह भी लोकोक्ति है। और एक समय के बीच के वहां नारद जी भगवान के यहां गया और नारद जी के मन में यू अभिमान आ गया कि संसार में मेरे समान कोई भक्त नहीं है। अभिमान न चूर करने के वास्ते भगवान है जिका बैठे बीमार बनकर के खटिया में सोचा है। बोले महाराज, आज आप खटिया में क्यों सोचा हो? अरे बोलो नाल अंगली के थोड़ी चोट लागी, जो अंगली कट गई तो इसलिए इसके आपने पाटी बांध रखी है, उसमें थोड़ी पीड़ा है। बोलो इनको कोई उपाय है कि जी कैसे अंगड़ी पासी जुड़ जावे और आपके पीड़ा मिट जा? बोले उपाय तो है किंतु कठिन है। बोले उपाय हो तो एक प्रकार से मेरे से बन सके तो मैंने बतलाओ कि नारद कोई मेरा अनन्य भक्त है, अरे के शरीर को खून से इन्हें जुड़े तो जुड़ जा। तो नारद बोले अभी मैं जाऊंगे। सो नारद मृत लोग में आकर के फिर लोगों से मिला कि बोले भाई तू भगवान की भक्ति करे, भगवान को भक्त है, पर भगवान में इस प्रकार से थी आकर कठिनाई पड़ी है। तो कोई भक्त आपको खून दे दी है तो वह खून से भिजाकर पाटी बांध दी जाए तो भगवान की आंगली का आराम हो जाए। बोले नारद मैं तो ऐसे भक्त को नहीं भैया। तो नारद पांच सात जगह गयो, मैंने सुखो जो बात मिले। फिर वो वृद्ध कहवा पहुंचे गोपियां के पास में, नारद जी से व्यापार कर गए, महाराज आप करता रहे हो बोले भगवान के धाम से, तो माने जो बात को भगवान के धाम की भगवान खुशी है ना। बोलो खुशी तो है किंतु बना के आंगड़ी का थोड़ी चोट लग गई, मैं गया तो भगवान कृष्ण जी के पास में तो मैं महल में सोचा पड़ा था और आंगड़ी के कि पट्टी बांध रखी थी, क्यों महाराज भगवान के तकलीफ हुई। बोले अगर कोई गंडो छीलता हुआ और चक्कू से एक प्रकार से आंगली कटगी थोड़ी, मैंने जोड़ रखी है, अब मैं पूछू के कैसे आराम हो सके। तो मैं बोला कि कोई मेरे भगत हो गए और वो आपके खून दीजिए तो मैं ऐसे बिजो बिजो कर पट्टी बांधने से आंगली जुड़ भी जावे, मेरे दर्द भी मिट जावे। घोषणा बोली कि दीदी मारे खून से बंद जुड़ जाए तो थारे कमंडलू भर के ले जाऊ। मारे खून से यदि हो सके, यानी कि आपने मेरे भगत हूं। देखो नारद एक प्रकार से तो हाँ जी सी हाँ ही, पर मारे खून से काम चले तो ठीक तो दे जाएंगे, तो वह आपको खून पहले दे दियो कि तो निकाल कर वो जिम्मा नारद मांगे तो थोड़ा दो तोड़ा पाओ आज से। अब नारद जी ने लेकर पूछा आपने द्वारका जी में कर लियो महाराज, तो वैसे बिजोकर की पट्टी खैर आपके भगवान बांध दिया अंग्रेज बांधते ही वह मिट गई बीमारी, और वो तो सब भगवान की लीला ही तो थी। बोले नारद एक प्रकार से अब देख ले तकलीफ तुरंत मिट गई है, तो भगवान पूछो रे ये कठे से लाया तू। बोले महाराज मैं कई भक्तों के पास गयो तो यो ही जवाब मिलो कि भाई ईसा भक्तों ने को नहीं जो मारे खून से भगवान की बीमारी मिट जावे। तो बोले फिर ब्रिज में गुरु ने गोपियां बोली कि महाराज मारो खून यदि काम आ तो और भगवान की बीमारी मिटे तो ठीक हो जाते थे, तो बठे बने ये मिले। हाँ बोले नारद संसार में क्या ठिकाना है, तुम जो नारद पूछे तो कि मेरी जिस भक्ति और में भी है कि तो तुम भी तेरा खून दे सके क्या यहां। है महाराज मंग तो क्या कह जाओ ना, तो बहुत ही प्रेम है मैं तो क्या कहूं। तो तू नारद मेरे दीदी अंगन भक्त है तो एक कमंडल लेकर के खून के वास्ते भाजते क्यों, फिर तेर लोग काट कर दे दियो तो। है महाराज ठीक है आप कहो, अब मेरे समझ में आई कि मेरे जो अभिमान हो कि मैं आपको भगत हूं जी को झूठो ही अभिमान। मेरे में प्रेम कट है, हाँ मैं मेरे में अभिमान अभिमान ही। अब मालूम हो कि ठीक है, प्रेम तो एक प्रकार से गोपिया पाई है। तो नारद की बड़े आंख खुली जाकर, यह भी लोकोक्ति है, एक दूसरे समय के बीच के वहां समझो कि नारद के दिल में अभिमान आ गए थे कि भगवान के आगे खूब नृत्य करे और गाँव बजाओ और एक से मुग्ध हो गए, और मुग्ध होकर के मन में यह अभिमान आ गए हो कि मेरे समान संसार में कोई गवियो नहीं है। भगवान ने विचार किया भी के तो जो अभिमान है जी को तो नुकसान करने वाला है। तो दूसरे दिन नारद घूमते फिर तू जो है गम्य लोगों में गये हो, सो नारद खुद देवता भी है गंधर्व भी है, माने गाणों बजाणों गंधर्वों की मापक सीखे है, और देवता जाति से है और ऋषि भी है, देवता होकर ऋषि हो जो देव ऋषि, और देवता होकर अपने गंधर्व हुए जी को देव गंधर्व, तो नारद गंधर्व भी तो ऋषि भी तो अपने देवता भी तो वहां जाकर के देखे कि किसी का आंख नहीं है तो किसी का एक आंख है, तो किसी के एक पैर है, तो किसी के एक हाथ है, यानी किसी को हाथ टूट गया, किसी की आंख फूट गई, किसी को नाक कट गयो, किसी को कान कट गयो, जितने मिले सब प्राय करके अंगहीन मिले। बोले भाई ये खुश हो तो लोग कह रही है सब स्त्री पुरुष को है, बोले ये सब राग रागनिया है, ये गंधर्व लोक है, ये पुरुष है जी का गंधर्व है, ये नहीं कि स्त्रियां है। बोले थारी या दशा कैसे हुई, बोले नारद की कृपा से। नारद की कृपा से कैसे, कि बोले भगवान को वो प्रेमी है, सत्यवादी है, प्रेम में मुग्ध होकर के गाणों बजाणों करे, तो कहीं की तो टांग तोड़ दे, कहीं को हाथ तोड़ दे, कैसे, बोले वो जो गावे ना जे हमारी स्थिति हो जाए तो कोई तो आपने गाना बजाने में कोई पद आपने खंडित करके गावे ना महाराज अंग खंडित हो जा, नहीं तो सब राग राग नहीं आठ है। तो बोलो थारे पाछा कैसे आवे, बोलो कोई सांगोपांग अंग और उपांग के सहित कोई आपने गाणो करे प्रेम के मां मुक्त होकर के तो मारा पाछा सजीवन हो जावे। बोलो ऐसा कुछ दुनिया में है कि, बोले हाँ शिवजी महाराज है शंकर, और शंकर के पास गए कि महाराज मैं इस तरह गये गंधर्व लोग में तो राग राग ने की ऐसी दुर्दशा हो रही है, सो आप अंग और उपांग के सहित और डमरू लेकर के नृत्य करो और गाना बजानो करो तो उनका अंग आ जाए। बोलो नारद ये तो मैं कर सकूं, पर एक प्रकार से कोई समझ नहीं हो जना आनंद आए, गाने बजाने को राग रागनिया के तत्व रहस्य समझे ना तो उसके सामने तो एक उसे में भाव पैदा हुए गानों गाय जाए, अभी कोई समझ नहीं होनी योजना के सामने क्या गाऊं। नारद को तू तो समझने वाला भी कोई मुझे समझ रहे आराम कौन है, मुझे है कई है जिया विष्णु भगवान है, अब विष्णु भगवान के वहां गए उदास देकर भगवान व्यास नाच तेरे चित्त पर उदासी क्यों। तो बोले महाराज यह बात है, राजराज नियंत्रित मन दया आ गई और मैं बम अपराधी हूं, तो अंग उपांग के सहित जो कोई गानों बजाओ अच्छी तरह करे तो वह के अंग वापिस आ जावे। तो शिवजी महाराज इस विषय के मां निपुण है, किंतु वे बोला कि कोई सुनने वालों हो तब तो करो, तो आपको नाम बताया सो आप चलो। वो शिवजी महाराज कीर्तन करे नृत्य करे तो बहुत ही आनंद की बात है। महाराज विचार कर लियो तो ब्रह्मा जी देवता है, वे बोले हम भी सब चलेंगे। तो ये सब आया हुआ। अब शिव जी से प्रार्थना करी, महाराज अब आपने गानों बजानों करो। तो शिव जी महाराज जो है सो प्रेम के मस्त होकर के राग रागने के सहित अंग रूपांग के सहित सो आप नृत्य करना शुरू किया। मैं गानों और बजानों डमरू लेकर के तांडव नृत्य क्या करे जो कर्म क्या, तो करना से थी सब जो है सो प्रेम में मुक्त हो गया। भगवान तो एक बना के तो शरीर में प्रेम चुने लगी जैसे अपना पसीनो चुने लगे, और वो शरीर को एक प्रकार से प्रेम के कारण वो बह करके आपने चले शरीर जन्म ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भरलियो में जल ने। अब राग रागनिया के सब अंग आगे अब वो काम सिद्ध हो गए। फिर भगवान अपने परम धाम को चले गए। नारद जी घूमते फिरते फिर गए तो फिर उन्होंने अंग उपांग से सही देखा, तो नारद जी के मन को जो अभिमान है वो ढल गए, जिससे जोर ढल जावे तो भगत के हृदय में कहीं अभिमान आ जावे तो भगवान में अभिमान चूर करने के वास्ते यह लीला किया करते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भगवान के शरीर को जो द्रव है जी कोई एक प्रकार से गंगा बोल करके प्रसिद्ध है, इसलिए जो गंगा जी को जो जल है जो भगवान के शरीर ही है, भगवान ही सुन प्रेम में बह गया वो जल, ब्रह्मा जी अपने कमंडल में रख लियो और वही जल से थी जब आपने समझो कि त्रिविक्रम रूप धारण करो तो तीन पैर से जमीन ने नापी थी और भगवान को समझो कि जो दूसरो चरण एकदम आपने ब्रह्मांड के कट्टा के ऊपर पहुंचो और वो फूट गए तो और वहां से एक प्रकार से समझो कि गंगा निकली भगवान के चरण के चोट से उसे, और उस गांव में ब्रह्मा जी ऐसे भगवान को चरण धोए तो मैं चरणा को जो धोन है जी को एक प्रकार से गंगा जी हो गई। तो इस प्रकार से गंगा जी की उत्पत्ति में कई हेतु बताते हैं, उनमें लोकोक्ति भी है और उसमें प्रमाणिक शास्त्र की कथा भी है गंगा की उत्पत्ति के विषय में। ये कथा देखने में नहीं आई जो गंधर्व लोक की बात में कही, लोकोक्ति सुनने में आवे। इस प्रकार से बहुत लोकोक्ति बातें हैं, शायद कोई पुस्तकों में भी पुराणों में भी कदम मिल सके। सब पुराण तो हमने देखे नहीं न सुने, सुना गया है कि नेपाल के बीच के मत 74 या 76 पुराण है, जैसे 18 पुराण 18 उप पुराण 18 महापुराण 18 अति पुराण किया और दो एक चार बत्ती होकर के इस तरह से सुना जावे तो कहीं कोई कथा हो तो आपने क्या पतो है। इसी प्रकार से जैसे कागभूषण और गरुड़ की जो कथा माने कागभूषण जी है जिसका उपदेश दियो गरुड़ जी ने तुलसी कृत रामायण में या कथा आवे है तुलसीदास जी कहां से ली या उनकी जो कथा है जो लोकोक्ति भी हो सके कोई पुस्तक के बीच के मन जो जितना देखे उनमें कहीं नहीं मिली तो तुलसी कृत रामायण में जो मिला है तो ये तुलसीदास जी तो पहला कोई बात नहीं लिखा तुलसीदास जी के जमाने में तो यह बात हुई नहीं तो यह बात तुलसीदास जी कहां से ली इसको मूल कोई ग्रंथ से नहीं मिला तो इन्हें लोकोक्ति मानी जाती तो इस प्रकार से बहुत सी बातें है जो लोकोक्ति है। अब समय हो गया इस वास्ते
लोकोक्ति विषय व्याख्यान पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति मार्ग शीर्ष कृष्णा त्रयोदशी सम्मत 2013 तदनुसार तारीख 30 नवंबर 1956 को प्रातः काल 5 बजे सत्संग भवन साहेबगंज गोरखपुर में दिया गया।
Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam.